गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ये ब्रह्म हमने यही सिद्ध करना है कि ये ब्रह्म उसमें प्रवेश करके बोला था कृष्ण में, महाविष्णु कहो काल कहो ब्रह्म को। ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, उनसे न्यून देवगण हैं और उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। 103 पर अब देखो, प्रश्न नंबर 103 पर, हे महाभाग, ये सर्व ब्रह्म में है विष्णु श्री विष्णु भगवान, सर्व ब्रह्म में है यानी इस ब्रह्म को ही विष्णु कहते हैं। श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों के प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। अब हमने यही सिद्ध करना है कि जो ब्रह्म है वो ये काल है और इसी को महाविष्णु बोलते हैं, ये अज्ञानतावश। अब देखिए 128 पृष्ठ पे क्लियर हो जाता है, श्री विष्णु पुराण अध्याय 7 और 8, अध्याय 7 में दिखाएंगे एक और प्रश्न नंबर 128 पे, अध्याय नंबर 7 8 आगे शुरू होता है। जिस से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। अब देखो आगे फिर ये, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, उसी को कभी परब्रह्म बोल देते हैं कभी विष्णु भगवान, वही परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम परम रूप है। अब कहने का भाव यह कि जो ये जिस विष्णु के बारे में ये स्तुति करके कहा और जिसने ये कहा कि मैं पुरंजय के शरीर में प्रवेश अवतीर्ण होऊंगा और उसमें प्रवेश करके गंधर्वों का नाश करूंगा, असुरों का नाश करूंगा। फिर 242 पृष्ठ पर जिसकी स्तुति की, वही काल रूपी ब्रह्म वो महाविष्णु कह रहा है, वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं पुरुकुत्स के शरीर में कुछ समय के लिए प्रवेश करके भूत की तरह और उनका गंधर्वों का नाश कर दूंगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण में वो ही प्रवेश करके और ये गीता का ज्ञान दे रहा है ब्रह्म। श्री कृष्ण को पता भी नहीं मैंने गीता जी में के बोला था। अब थोड़ा सा प्रश्न ये बीच में दिखाएंगे कि श्री कृष्ण जी को ये पता ही नहीं मैंने गीता में के बोला था। देखिए श्री संक्षिप्त महाभारत, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर, संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का, जो गीता जी का अनुवादक है वो इसी महाभारत का अनुवादक है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 667 पृष्ठ पे, इसके 667 पृष्ठ पे अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। जन्मजय ने पूछा, जन्मेजय ने पूछा, शत्रुओं का नाश होने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठे थे, यानी महाभारत खत्म हो चुका था, वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई। वैश्पायन जी बोले, वैश्पायन जी ने कहा, राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सवरजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो सूर्य के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण को, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश मुझे पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, गीता जी का ज्ञान दिया था, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः यह सब विषय मुझे सुना दीजिए, वह गीता जी का ज्ञान फिर सुना दीजिए। वैश्पायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर, ये 667 प्रश्न चल रहा है, वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री कृष्ण जी बोले, उन्हें गले से लगाकर, महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले कि उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, उसमें गीता में अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। लेकिन स्वयं क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी कि उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का तुम दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था, ज्ञान सुनाया था। अरे जब युद्ध के मैदान में योग युक्त हो सके है इंसान, अब शांति क्षेत्र में क्या दिक्कत आएगी योग युक्त होने में ही बोले। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला था, युद्ध के मैदान में योग युक्त तो ना वैदा की जीवन धीरा आदमी की। अच्छा, अब जो प्रसंग चल रहा था, अब जैसे आपको कल कथा सुनाई थी कि श्री कृष्ण जी तीन बार शांति दूत बनकर गए थे, तीन बार शांति दूत बनकर गए थे युद्ध ना हो, और लास्ट में जब नहीं मानने वे तीनों के दोनों के दोनों पक्ष, तो श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा और एक तरफ मेरी सेना होगी एक तरफ मैं होगा, और मैं कसम खाता हूं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तब पांडव ने सोचा कि तुम बेइज्जती होगी, हारो भी गे। श्री कृष्ण जी के ऊपर ही वह उछल रहे थे, तब उन्होंने कहा था भगवान हमें 5 गांव दिला दो। तो क्या किया था श्री कृष्ण जी ने, जब पांडवों से कौरवों से कहा जाकर के, जब श्री कृष्ण जी ने कौरवों कौरवों से कहा जाकर के कि आप 5 गांव दे दो पांडवों को और तुम्हारा जो है ना फैसला हो गया। लेकिन दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो कहने लगा सुई की नोक के समान भी पांडवों के लिए स्थान नहीं है, यदि उन्हें लेना है तो युद्ध करके प्राप्त कर सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को खोटी खड़ी सुना दी कि तू शैतान नहीं, प्रजा का नाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। तो 5 गांव कहां, 5 गांव और कहां आधा राज्य, तेरी बुद्धि कहां चली गई नालायक। तू नहीं चाहता ये शांति हो इस क्षेत्र में, तू नाश करने वाला है। इस तरह की करड़ी करड़ी बातें कही तो श्री कृष्ण जी को अरेस्ट करने के लिए दुर्योधन आदेश दे दिया अपने योद्धाओं को। जो ही श्री कृष्ण जी को अरेस्ट करने की कोशिश की करने लगे वो योद्धा, तो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और उस विराट रूप को दिखा करके सबकी आंखें चुंधी आ गई, इतना तेज निकला उनकी शरीर से। और वो आंखें बंद करके पड़ गए कि उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ डर गए, कुछ सोफों के नीचे घुस गए। तो श्री कृष्ण जी वहां से बचकर निकल गए, अपना द्वारका चले गए। अपने आत्माओं ये पॉइंट याद रखना कि श्री कृष्ण जी ने युद्ध के दौरान, युद्ध के जो उनके कंप्रोमाइज कराने गए थे उस समय अपना विराट रूप दिखाया था। ठीक है, अब हम आते हैं गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 और 46, 47 और 48 में। उससे फिर क्लियर होगा कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण से भिन्न है। वहां गीता ज्ञानदाता कहता है तो कि मैंने अब ये विराट रूप दिखाया तेरे को, इस विराट रूप को अर्जुन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने देखा। यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते तो ये शब्द नहीं कहते कि मेरे विराट रूप को तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे, सब कौरवों ने देख लिया था, तभी तो उनकी आंखें बंद हुई, देख के डर गए। इसे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान नहीं कहा। अब देखिएगा अपनी आंखों से और इन सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो, इसमें ये खुद कहते हैं, गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 32। अब क्या कहता है, लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूं, महाकाल नहीं है, प्रवर्ध है बड़ा हुआ काल है अस्मी, मैं काल हूं, इसमें इन लोगों का नाश को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ये प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इनका नाश हो जाएगा। अब 46 में देखिएगा, 11 के अध्याय नंबर 11 का और श्लोक नंबर 46। अब अर्ध कृष्ण जब उसने विराट रूप दिखा दिया तो क्या कहता है कि मैं वैसे ही, अर्जुन कह रहा है हे विष्णु, यानी वो कृष्ण ही मान रहा है उसको और विष्णु ही मान रहा है अर्जुन, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, हाथ में गदा, गदा चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, सहस्रबाहो माने 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अपने आत्माओं 46 से हम चले हैं, श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी 4 भुजा के भगवान हैं, 5वीं नहीं लगा सकते हो, वो 2 भी बना सकते हैं और 4 भी दिखा सकते हैं, इससे अधिक नहीं है। और ये 1000 भुजा का भगवान, ये ज्योत स्वरूपी काल है, निरंजन है, ये ब्रह्म है। इसमें कहा कि सहस्रबाहो, सहस्रबाहो माने एक हजार भुजा वाले भगवान आप उसी चतुर्भुज में आइयो, क्योंकि श्री अर्जुन को पता है कि विष्णु तो कृष्ण विष्णु का अवतार है और विष्णु जी चार भुजा वाले हैं, तो आप उसी अपने चतुर्भुज रूप में आइए। इससे सिद्ध हो गया कि एक हजार भुजा का भगवान ये काल है। आगे देखो, अब 47 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 47 देखिए। हे अर्जुन, अब गीता ज्ञानदाता बोलता है, ये भगवान वाच, श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। क्लियर हो गया? आप पुण्यात्मा विचार करो, एक एक पॉइंट, ये है टीचर का काम। जो हमारे आध्यात्मिक में गुरु थे उन्होंने इतना गहनता से सोचना चाहिए था इसका अनुवाद करते समय कि ये क्या बोल रहा है, जबकि वो सभी कथाएं सुनाते थे, महाभारत की भी सुनाते थे, गीता भी पढ़कर सुनाते थे, शिवपुराण भी सुनाते थे, विष्णु पुराण भी सुनाते थे, और कहीं सिर पैर उनके ज्ञान का नहीं था। अब ये स्पष्ट करता है कि तेरे अतिरिक्त पहले मेरे इस विराट रूप को किसी ने नहीं देखा था, और जबकि श्री कृष्ण कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा चुके थे, सारे कौरव देख रहे थे। इससे सिद्ध है कि वो श्री कृष्ण गीता जी नहीं बोल रहे थे। आगे देखो 48 में क्या कहा है, 48 में फिर दोबारा यही बात कही है, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त द्वारे दूसरे द्वारा नहीं देखा जा सकता हूं। अब यहां फिर बता दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई साधना जो वेदों में वर्णित विधि है या कोई यज्ञ साधना से, किसी भी प्रकार से मैं, किसी उग्र तपों से मेरा वास्तविक रूप ये काल रूप है, कोई भी नहीं देख सकता किसी भी साधना से, न वेदों वर्णित विधि से, न यज्ञ से, न जप से, न तप से। तो इससे सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं बोला, इस ब्रह्म ने बोला, ब्रह्म ने, और यही सदाशिव, महाशिव, महाब्रह्मा और महाविष्णु कहलाता है, और यही ब्रह्म है जो साधना की संतों ऋषियों ने, महर्षियों ने, भक्तों ने वेदों से ओम नाम का जाप लेकर के पूर्ण परमात्मा का नाम मान कह के ये जाप पूर्ण परमात्मा का है, वेदों में केवल एक ओम नाम के जाप का ही प्रावधान है और किसी मंत्र का नहीं है। ऐसे ही गीता जी में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में खुद गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक यह ओम अक्षर है, और यह प्रयाति तजंदे है, यह उच्चारण करके जाप करने का है, और जो यह प्रयाति तजंदे हम सयाति परमाम गति, और जो इसको अंतिम श्वास तक, अंतिम श्वास तक इसका जाप करता असली छोड़ जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। मेरे वाले ज्ञान का मैं जो मेरे इस ओम नाम से मिलने वाली जो सुविधा है, जो स्थिति है, जो लाभ है, वो प्राप्त कर लेता है। इससे सिद्ध हो गया कि उस ब्रह्म का जो गीता बोल रहा है वो कहता है मेरा तो एक ओम नाम है, और विष्णु जी ने कहीं नहीं कहा ऐसा मेरा एक ओम नाम है। अब ये गीता का ज्ञान कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है ब्रह्म। अब ये गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आपने आप देखिएगा, क्योंकि सदग्रंथों को रूबरू कराना इसलिए नहीं अनिवार्य हो गया कि जब तक हम आख्या नहीं देख लेंगे इतना विश्वास ना होता, क्योंकि हम गलत ज्ञान को गणेदन तो सुनते आ रहे हैं और वो ऐसा जम कर बैठ गया हमारे अंतःकरण में, हटाए तो नहीं हटता। एक झूठी बात को 100 बार किसी ने बोल दिया और 100वां ने फिर आगे सुन लिया तो वह झूठी बात भी सच्ची लगन लग जाती है कि वो भी कह रहा था, वो भी कह रहा था, वो भी कह रहा था, अब जैसे हमारे साथ ही क्रोथा कांड हुआ है, इसमें मीडिया ने 100% झूठ बोली, अधिकारी कर्मचारियों ने प्रारंभ तो झूठ बोली लेकिन फिर बाद में सच्चाई बोलना पड़ा। अब उस अज्ञान को, उस झूठी अफवाहों को अखबारों में, मीडिया में पढ़कर प्रत्येक अंत उस झूठ को भी उन्हें सच्चा मान रखे। ऐसे ही आज हमारे जो सदग्रंथ हैं उनको लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से उनके यथार्थ ज्ञान के विपरीत उस झूठी कथाओं को हम सुनते भी आ रहे हैं, दंत कथाओं को, लोक वेद को, और वो लोक वेद हमने कति सच्चा लगा है जबकि आज सदग्रंथों के कति विपरीत है। अब वो छूटना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि किसी एक ने, दो ने, दस ने, हजारों ने, लाखों ने वही ज्ञान सुना रखा था और वो हमने झूठा ज्ञान भी सच्चा लगने लग गया। अब उस झूठे को झूठा सिद्ध करने के लिए इन सदग्रंथों की आवश्यकता है, नहीं तो आप कति भी ना देखो और लड़ने लग जाओ हमारे साथ कि झूठा है, तो कपटी है, कहीं नहीं लिखा ऐसा। पुण्यात्माओं, एक बार एक अंधा रात्रि में लालटेन दिए जा रहा था, अंधा, कुछ बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, अंधे ने आवाज लगाई, बच्चों जरा ध्यान से चलना, भाई मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधा हूं बेटा। बच्चे वहां आकर चारों तरफ घेर लिया उस वृद्ध को, अंधे को, और पूछा कि बाबा क्या आपको दिखाई नहीं देता? तो अंधे ने कहा कि हाँ बेटा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हूं मैं। तो बच्चों ने पूछा कि आपने फिर यह लालटेन किस लिए ले रखी है, टॉर्च क्यों ले रखी है? अंधे ने कहा कि तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो तुम, बूढ़ा आदमी टूट जाए मेरी हड्डी, कोई उठावा न बिठावा फिर बेटा। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ जो है इस दास को आवश्यकता नहीं थी, ये नहीं कि ये मेरे लिए आदरणीय नहीं है, क्योंकि सर्वसम जो सूक्ष्म वेद है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि इस प्रकार के जो 25 से लेकर 30 31 तक जो ज्ञान दिया है चौथे अध्याय में, कोई ऐसे साधना करता, कोई ऐसे साधना, ये इस प्रकार की साधना उस ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में, उनके मुखारविंद से उत्तरित वाणी में विस्तार से कहे गए, उसको तू ध्यान पूर्वक सुन और वो कर्मों से काम करते करते पूर्ण होते हैं, हठ योग से नहीं। अब स्वाभाविक कर्म करने से वो सोसम वेद में बताए साधना संपूर्ण हो जाती है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, भगवान सच्चिदानंद घन की वाणी में जो है, वो सोसम वेद को तू किसी तत्व ज्ञान दर्शी संतों से बुझाकर सुन और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, पूर्ण परमात्मा की सम जानकारी देंगे। तो पुण्यात्माओं, मेरे पास वो सूक्ष्म वेद उपलब्ध था मुझे, और सूक्ष्म वेद के आधार पर इस दास ने सन 1994 से लेकर सन 2001 तक उसी सूक्ष्म वेद से ही प्रचार किया और हजारों की संख्या में पुण्यात्माओं ने स्वीकार किया, जिन और क्योंकि वो उसमें साथ के साथ समाधान परमात्मा देते हैं, दुख दूर करते हैं वो पूर्ण परमात्मा। फिर इस दास ने प्रार्थना की, अर्ज की थी परमेश्वर से, हे प्रभु ठीक है आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं मालिक, और आपकी शक्ति में कमी नहीं, हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे सुख अपने बच्चों को दे रहे हो आप, लेकिन ये भ्रमित समाज, इन नकली संतों द्वारा भ्रमित समाज में, नकली महर्षियों द्वारा भ्रमित समाज को, यह समाज तो परमात्मा वेदों और गीता से, पुराणों से ही समझ सकेगा आपको, अगर उसमें आपका विवरण मिल जावे। उसी समय इस दास को वह वाणी याद आई कि वेद हमारा भेद है, पर मैं वेदन में नाही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो इससे ये ज्ञान आत्मा में एक बात चुभी कि परमात्मा जो बोल रहे हैं कि वेद मेरा ही भेद है, तो अवश्य परमात्मा की महिमा पावेगी। अब समस्या संस्कृत नहीं आवा हमें, लेकिन वो समाधान जब वेद लाए, गीताजी का तो पता था भी ये हिंदी भी अनुवादित है, अनुवाद की गई है, वेदों को लाए तो देखा उसमें अनुवाद किया हुआ है उन व्यक्तियों ने, उन अनुवादकर्ताओं ने जैसी उनकी बुद्धि ने काम किया, लेकिन कुछ गलत बहुत कर रखा है, सत्य नहीं कर पाए क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था। अब जैसे कोई विदेशी व्यक्ति और हिंदी सीख ले, एमए कर ले हिंदी में कर ली, और उसने रामायण की चौपाई कर दे दे कि इसका अनुवाद कर, और उसको मौखिक ज्ञान है नहीं रामायण की कहानी का, तो अनुवाद करेगा तो गुड़ का गोबर कर देगा, वो के का के लिखेगा, रावण का कुछ लिख देगा, एक रुलाने वाला था, सीता ठाली, सीता पता ना लाकड़ी थी कोई और थी, मतलब इस तरह के वो ज्ञान अनुवाद कर देगा, लेकिन वो यथार्थता तक नहीं पहुंच सकता। तो सृष्टि रचना का जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, वह सदग्रंथों का अनुवाद नहीं कर सकता, कितना ही विद्वान बना रहा, कित संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसने संस्कृत आ गई लेकिन कथा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उस लैंग्वेज से वो अनुवाद करके के देगा हमारे को, ऐसा उन्होंने किया हुआ था। फिर भी इस दास ने देखा, पांचवें अध्याय के 32वें श्लोक में, कबीर अंगारी असी आयु सरोसी बंभारी असी, ओहो रत धामा सवर ज्योति रत धामा असी, वो तिरेगी वो कबीर परमात्मा, पापों का शत्रु, पाप का टनाला और बंधनों का शत्रु, बंदी छोड़ रत धामा सतलोक में, सतलोक वास का मालिक, वो तिरे की। और फिर इच्छा बढ़ती चली गई कि जिसी भी, फिर हमने शब्द कोश लाए, शब्द कोश के आधार पर अनुवाद किया, तो जो अनुवाद उन व्यक्ति इन महर्षियों ने नकलियों ने कर रखा था वो बिल्कुल गलत कर रखा था, और सर्वसम वेद हमें ज्ञान था, दो मिनट में सरलार्थ हो गया वो किया। तो सबसे पहले इस दास ने गीता जी को देखा, गीता जी को पढ़ने लगा तो देखा कि वो परमात्मा तो गीता ज्ञान दाता से कोई और है, जिसकी महिमा गाई गई है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वही पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, इसलिए इन सदग्रंथों की रोशनी में उस तत्व ज्ञान को फाइनल करने के लिए, ये तत्व ज्ञान जो कबीर परमेश्वर ने दिया था वो ज्ञान 100% सही है, और इसका हमारे सदग्रंथ भी समर्थन कर रहे हैं। अब जो हमारा पवित्र हिंदू समाज है वो इन पवित्र सदग्रंथों पर आरूढ़ है, पवित्र चारों वेदों पर, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता पर, पवित्र पुराण और महाभारत पर। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को ये दास पहले ही बताता था कि ये नाशवान है, ये अजर अमर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो मानते थे, हमारे जो विशेष संपर्क में आए थे, जिनके सुख हो गए थे घरों में, वो तो मानन लायक गए थे कि भाई हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं ना, कितने दिन हो गए तेरे कोई लाभ नहीं हुआ, और अब गुरुजी जो नाम दे रहे महाराज जी इससे हमें लाभ हो रहा है, तो वो तो इसलिए स्वीकार कर रहे थे। लेकिन उनमें से बहुत से डगमग हो जाते थे, जब सुख हो जाता था आना बंद कर देते थे, दूसरे लोग भ्रमित कर देते थे कि तुम्हारे महाराज जी झूठ बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, वो तो अजर अमर है। तो जब ये उनको ये सदग्रंथ दिखाए तो दांतों तले उंगली दबाई, दास ने दिखाया, उन्होंने घर जाकर देखा, मोल लाए, फिर सच्चाई को स्वीकार किया और दास से उपदेश लेने आए। तो इसलिए ये जो सदग्रंथ, आपको अगर मैं सीधा कह दूं ब्रह्मा विष्णु में इस नाशवान है, तो सिर्फ उड़ना तैयार हो जाए हिंदू समाज दास का, और साथ में फिर लालटेन दिखा देता हूं मैं, देखियो भाई कदे मेरे गिर टकरा जाओ बूढ़े आदमी गेल, आपकी इस सदग्रंथों की रोशनी में मुझसे बच जाओ, वो फिर मुझसे टल जाएंगे, सदग्रंथों को देखने लग जाएंगे, उस रोशनी में फिर वो ठीक रास्ते पर चलकर मुझसे भी नहीं टकराएंगे, और अपना कल्याण जिसने करवाना है वो कल्याण करवा लेंगे, ना करवाना वो बाढ़ में जाओ, वो चुप अवश्य हो जाएंगे, न्यू नहीं कह सकते कि वहां नहीं लिख रखा, अगर रामपाल झूठ बोला है ये जुबान उनकी बंद हो जाएगी। इसलिए सदग्रंथ दिखाना अति आवश्यक है। अब देखिएगा गीता जी का ज्ञान, ब्रह्म ने कहा जिसका ओम अक्षर है, देखिए, और वही महाशिव महाब्रह्मा महाविष्णु रूप धारण करता है, देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, ये लालटेन दिखाता हूं आपको, ये वही पुस्तक है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 13 ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ओम ही यह एक अक्षर है। व्यवहारण माने उच्चारण करके अनुश्रवण माने श्रवण करता करने का श्रवण करता हुआ मेरे इस माम माने मेरे यानी मुझ ब्रह्म के इस ओम इति एक अक्षर का जो भी उच्चारण करके श्रवण करता हुआ और यह प्रजाति तजन देहम सयाति परमाम गति तजन देहम शरीर छोड़ने तक जो इसका जाप करता है वह मेरे वाली गति को प्राप्त होता है यानी परम गति को प्राप्त होता है। यहां से शुरू होता है, इसमें 12 और 13 दोनों का अनुवाद इकट्ठा है। यहां तक तो 12 हो गया। यहां से जो ओम जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इन्होंने कहा मुझ निर्गुण ब्रह्म का इनका सीधा कर दे मुझ ब्रह्म का इन्होंने ज्ञान तक में था नहीं उलझा रखा इस एक अक्षर रूप ब्रह्म कह दिया। अब जबकि यह सीधा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है और यही उच्चारण करके श्रवण करने का जो अंतिम श्वास तक श्रवण करता हुआ श्री छोड़कर जाता मेरे वाली गति को प्राप्त होता परम गति को। अब यही गीता ज्ञान दाता वही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है जिसको सदा शिव काल भी कहते हैं। अब ये इतना कठिन जटिल का ज्ञान उलझा दिया अज्ञान ने, इसको सुलझाने के लिए ना जाने कितने प्रमाण आपके समक्ष रखने पड़ेंगे। देखिएगा शिवपुराण, ये शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संक्षिप्त श्री शिवपुराण, संपादक है अनुमान प्रसाद पोदार और ये यहां से प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा प्रश्न नंबर 26 पर। अब ये वो प्रसंग है इसके अंदर, इसमें वो प्रसंग है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं विष्णु का पिता, विष्णु का था मैं तेरा पिता, झगड़ा हो गया। तो उस समय ये काल रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो है वो चौथा वो आकर प्रकट हुआ शिव रूप में। उसने अपने काल रूप में जो गीता में अर्जुन को दिखाया था वो उसका वास्तविक रूप है। उसने प्रतिज्ञा की है कि इस वास्तविक रूप में मैं कभी किसी को किसी विधि से किसी जंतर मंतर जाप से तप से दर्शन नहीं दूंगा। वो इसलिए सदा शिव रूप में या विष्णु रूप में ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है, इसलिए उसको महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव कहने लगे, है वो ब्रह्म। अब यहां देखो ये है श्री शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण प्रश्न नंबर 26 पे और ये है विद्वेश्वर संहिता 126 पे नीचे आ जाते हैं। अब वो सदा ये काल रूपी ब्रह्म ये काल बोलता है शिव रूप में धारण करके, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए, ये दोनों ही बहुत तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम कृत हैं, कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए। इसे कैसे दोया कि ये तुम दोनों ने सतीथि विष्णु ने और सृष्टि ब्रह्मा ने इन तुम दोनों ने दो कृत प्राप्त किए हैं यानी ब्रह्मा और विष्णु को यहां बता दिए हे पुत्रो, और फिर दो और बताया रुद्र और महेश ने ये दो और प्राप्त किए सहार और त्रोभाव, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की। यानी रुद्र को और महेश को तो उसने काल ने जो महाशिव रूप में दर्शन देता है उसी जैसा रूप इनको दिया हुआ है, उनसे मिलते जुलते हैं इनके स्वरूप। ये सिद्ध हुआ। आगे देखो ये लिखा है, वे रूप वेश कर्त वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही है। इसे सिद्ध हो गया कि जो शिव हम देखते हैं उसके समान ही ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्म है, काल है। यहां ये क्या बता रहा है कि इन सभी ऊपर सारा बताया इन्होंने, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया था, किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरी मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ। अब यहां देखो ऊपर इनके विषय बताए हैं, अकार मुख से उकार, दक्षिण मुख से अबकार, पूर्ण मुख से बिंदु, ऐसे ऐसे कहते हैं। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर वह पर्वण मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। आहार ओम नामक एक अक्षर है ये, ओम नामक एक अक्षर। यही सिद्ध करना चाहता था कि ये ओम एक अक्षर जो जिसका जाप है वो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है, वो श्री कृष्ण नहीं है जो गीता बोल रहा। अब देखो 53 में यहां देखिए इन्होंने जो ये ओम नमः शिवाय यही पांच मंत्र का अक्षर इन्होंने सिद्ध किया है, मुख से एक दो और बिंदु तीन, मध्यवर्ती मुख से नाद, इस प्रकार पांचवा अवय युक्त, इन पांचों अवय से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवय से एकीभूत होकर वह पर्वण मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां इन्होंने क्या बताया है कि ओम नमः शिवाय यह पंच अक्षर मंत्र है, ये किसी अपनी सोच है, ये मूल संस्कृत में नहीं है। ये जो ओम नमः शिवाय जो बताया अनुवादकर्ता ने अपनी सोच घसोड़ दी और हिंदी पढ़ने वालों ने इसी मंत्र पर जोर लगा दिया। आपको मूल संस्कृत दिखाएं क्योंकि प्रकरण लंबा हो जाता है इसलिए, लेकिन दिखाना पड़ेगा। ये है शिव पुराण, ये देखिएगा, ये शिव महापुराण हिंदी टीका सहित, और ये किसने कैसे कहां से प्रकाशित है, श्री शिव महापुराण विद्या अवृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, और ये कहां से प्रकाशित है, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से। अब इसके हम आते हैं विद्वेश्वर संहिता के प्रश्न नंबर 19 पे, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 19 पे विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 10 का, इसी ओंकार से सब जगत बोधक पर्वण मन उत्पन्न हुआ, वही ओम। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ, यह एक ओंकार होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो गया। एकाक्षर ओम का अर्थ एकाक्षर समझो, ओम एकाक्षर है। ये 19 में कहा है हिंदी में, ये 19 है, ये 20वां है, ये 20वां है, और ये स्पष्ट क्या है, आकार पूर्वक मकार पश्चिम अनंत और मकार दक्षिणोमुख, इस प्रकार बिंदु ये है नादो मध्यमुख, मध्यमुख देवम पांच पंचीभूत। अच्छा यहां एक एक की भूत पुनः तत् उदो ओम इति एक अक्षरो भवत, इसमें कित ओम नमः शिवाय नहीं है, 20 के 20 में कहीं पर भी ओम नमः शिवाय का जिक्र नहीं है। फिर देख लो ये 17वां ये 18वां, यहां से है ये 19वां, इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय नहीं है। एकीभूत पुनस्तद तदो ओम इति, ये ओम तत् ओम इति एकाक्षरो भवत है, इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। वैसे तो यहां से शुरू किया है इन्होंने, कहीं से देख लो, रूपवेशधारी आसन हमारी मेरी साम्यता थी, ये वही है जो मैंने वहां सुनाया था। इसमें यहां भी यही लिख रखा है कि पुत्रो, वही प्रकरण है, पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अन्य ग्रह मैंने किसी को पाने में समर्थ नहीं है। तो यहां यही प्रसंग है जो मूल संस्कृत में भी, और यहां और ये लिखा ना इसके बारे में कि ये मेरे रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया, इसलिए वो मेरी सम्मानता में हैं, इसलिए वो मेरे जैसे ही हैं। रुद्र और महेश, यहां देखो, रूप वेश कृत आसन वाहन और आयुध आदि में मेरी साम्यता थी। इस प्रकार ये सारा कुछ सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं और यह मेरी साम्यता थी। हे सोम, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। किसको? ब्रह्मा विष्णु को करें। और मेरे ज्ञान न होने से ऐसा, ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस प्रकार इस ज्ञान की सिद्धि के लिए निमित्त ओ ओंकार नामक मंत्र जप करो। और कुछ भी मंत्र नहीं बता रहा, क्या ओंकार नामक मंत्र जप करो, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही समान है, मेरे ही रूप का बोधक और मंगल महामंगल करने वाला है। यह वाचक है और मैं वाच्य हूं, यह मेरा आत्मा मंत्र आत्मा है, मेरा आत्मा है। इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर से मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य मुख के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच प्रकार से यह निर्गत हुआ, यह सब प्रकार से एक हो ओम ऐसा ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह नाम सब रूपांतक भूत वेद भूत दोनों कुल अर्थात क्षत्रिय पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग दो का भेद वाला है। यह इसी मंत्र से व्याप्त और शिव शक्ति का बोधक है आदि आदि। इसी ओंकार से सब जगत बोधक प्रवण उत्पन्न हुआ है। अकार आदि क्रम से अर्थात अकार से नकार से उकार से मकार से सी बिंदु व नाद से यह प्रकट हुआ। पांच अक्षरों का हो गया, पांच मात्राओं से। और इसी पंचाक्षर से पांच भेद से मृत का आकार से ऋण का परिणत हुई। ये सारा कुछ लिखा हुआ, इससे और भी जो बने हैं लेकिन ओम में शिवाय कहीं नहीं बनता। इससे सब वेद उत्पन्न हुए हैं, सब करोड़ों मंत्र उत्पन्न हुए, उस मंत्र से ओम से ही उसके कथनानुसार सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से यह सिद्धि होती है। परंतु पंचाक्षर मंत्र से यही पंचाक्षर मंत्र है सिद्धि होती है। इसे मूल मंत्र से सब इस मूल मंत्र से सब सिद्धि भोग मोक्ष आदि सिद्धि होती है। काल सहित सब कहीं पर भी इसमें ओम नमः शिवाय नहीं है। इस मंत्र पित्त विष्णु अनुवाद में आगे देख लो, ये कहीं भी इसका वो नहीं है। तो हमने ये यहां तक देखा, ये 19 में इन्होंने इसमें ओम नमः शिवाय अपनी ओर से घुसेड़ दिया। और इन भोली आत्माओं ने हिंदी वाली पढ़ ली, उसमें ओम नमः शिवाय का रटना ला दी। ये ओम नमः शिवाय शास्त्र विरुद्ध मंत्र है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता ना गति ना उनकी कोई सिद्धि होती है। अब ये क्लियर हो गया कि ओम एक अक्षर जो है। अब इसी यही 53 पर भी देखो शिव पुराण। ये वही संक्षिप्त शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 53 पर 53 है। पर्वण के दो भेद बताए गए हैं, सथूल और सूक्ष्म। यह एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म पर्वण जानना चाहिए। इन्होंने ये अपनी तरफ से नमः शिवाय इस पांच अक्षर वाले मंत्र को सथूल पर्ण नहीं, ये जो ये सारा इन्होंने अपनी तरफ से घसोट रखे। हाँ, जो वो हमने 26 पे देखा था इसमें कहीं पर ऐसा नहीं है। ये 26 पृष्ठ पे हे पुत्रो तुमने दोनों तपस्या करके मुझसे मुझ पर से सृष्टि स्थिति ये पढ़ लिया आपने, तो यही आगे उपदेश करता हुआ आ रहा है कि मेरे पहले सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोधक है, ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं आदि। मेरे उत्तरी मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, ये सारा वही आ रहा है। इन सभी अवश्य एकीभूत होकर यह पर्व ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है, ये इस अनुवाद करता की अपनी सोच है, भगवान की तरफ से नहीं है। इस पंच अक्षर मंत्र से मातृवर्ण प्रकट हुआ जो पांच वेद वाला ये आ गया। इन्होंने ऐसा नहीं है, ये अनुवादकर्ता ने ओम नमः शिवाय अपनी तरफ से दिया। और ये सिद्ध करना था कि ये ओम जो है ये एक अक्षर शब्द है अलग से, इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने ये काम बिगाड़ रखा है कि गीताजी का अनुवादकर्ताओं ने भी ये लिखा है कि ओम एक अक्षर ब्रह्म रूप, एक अक्षर ओम एक अक्षर ब्रह्म स्वरूप नहीं, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर, ये एक अक्षर है। ये भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ये काल है, ये सदाशिव महाशिव और महाब्रह्मा महाविष्णु आदि का रूप धारण कर लेता है। और जिसने महाविष्णु रूप में देखा उसको तो उसने शिवपुराण की रचना कर दी, महाशिव रूप में देखा जाना, और जिसने महाविष्णु रूप में देखा उसने विष्णु पुराण में उसी को हीरो बना लिया, और फिर महाविष्णु में इसकी स्थिति अलग से बताई गई है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता जी का ज्ञान किसने कहा। श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, उसमें प्रवेश करके काल भगवान सदाशिव जिसको कहते हैं चाहे महाविष्णु कहो, जो ब्रह्मा विष्णु अर्थात कृष्ण जी हर का पिता है, उसने ये ज्ञान बोला, ये सिद्ध हुआ। फिर कुछ कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता जी का ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि वो अक्षत्रिय धर्म से विचलित हो रहा था और अक्षत्रिय नी अक्षत्रिय हो जाते हैं, पुण्यात्मा या विवाद निजस्ती। श्री कृष्ण जी अक्षत्रिय धर्म से बिलोंग करते थे, और जब मथुरा के ऊपर काल्यवन चढ़ाई की 18 करोड़ सेना लेकर के युद्ध किया करने के लिए आया, तो श्री कृष्ण जी उस समय कंस को मारकर और राजा अपने नाना जी अगरसेन को गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन अगरसेन बहुत वृद्ध हो चुके थे, टूट चुके थे, उन्होंने अपने भांजे अपने दोते श्री कृष्ण जी को ही ये सेना की बागडोर दे दी थी, राज की बागडोर दे दी थी। तो उसी समय कंस का प्रतिशोध करने के लिए लेने के लिए काल्यवन चढ़ाई कर दी। तो श्री कृष्ण जी अक्षत्रिय थे, सेना भी उसके पास थी, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले नारद जी ने श्री कृष्ण जी को बता दिया था कि यहां एक गुफा में मुचकंद नाम का एक राक्षस राजा है, वो 6 महीने युद्ध करता है, 6 महीने सोता है, उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं कि उन सोते हुए को 6 महीने सो रहा होता है, यदि कोई जगा दे तो उसमें से अग्नि बाण निकलते हैं उसकी आंखों से और वो सामने वाला मर जाता है, तुरंत नष्ट हो जाता है। नारद जी ने इसलिए बताया था कि कहीं आप उसने छेड़ दो और आपको आपत्ति आ जाए, वो न्यू बता के गए थे। तो वो बात श्री कृष्ण जी का याद आ गई, तो श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि 18 करोड़ सेना आ गई है और हमारी सेना बहुत कम है, और यदि अक्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ही अर्जुन को प्रेरित करते तो स्वयं वो युद्ध छोड़कर नहीं भागते। श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि इतनी सेना आ गई हम इसका युद्ध नहीं कर सकेंगे और सेना मर जाएगी, क्या रखा इस बात में, ये अक्षत्रिय अपना यही दरा दरा रह जाएगा, उल्लू सीधा करना है, शत्रु मरवाना है, और भाग लेता हूं उस गुफा में प्रवेश कर जाऊंगा जहां पर काल्यवन है, इससे उसको मरवा दूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने काल्यवन को ललकारा के आ नीचे आ मेरे साथ युद्ध कर। तो उसमें राजा से राजा युद्ध करता था, मंत्रियों से मंत्री, और उनकी पहचान रेशनरी होती थी, सैनों से सैनिकों से सैनिक। तो जो ही काल्यवन नीचे रथ से कूदा गदा लेकर, श्री कृष्ण भी सामने हुआ, जब फिर श्री कृष्ण जी भाग लिया युद्ध छोड़कर, और जिस कारण से श्री कृष्ण जी को रण छोड़ भगवान कहने लगे, रण छोड़ माने युद्ध छोड़कर भागने वाला भगवान। अर्नो क्या करते, जय हो रण छोड़ भगवान की। इनो बेराना ये श्री कृष्ण जी की बेइज्जती करें कि इज्जत करें, रण छोड़कर भागने वाले भगवान की यानी कायर की जय हो। रण छोड़ भगवान कहना कायर कहना, इसका सीधा अर्थ है। तो ये से हम नारे लाया करते इन भगवानों के। तो श्री कृष्ण जी ने अपना क्षत्रिय धर्म को नहीं देखा, जनता के संहार को देखा, लाखों लोग मर जाएंगे, एक नाश हो जाएगा, युद्ध हो गया तो बात बिगड़ जाएगी। तो वहां जाकर के मुचकंद राजा जिस गुफा में सो रहा था, उस मुचकंद वाली गुफा में गहरा चला गया। वहां जाकर के अपना जो कपड़ा था पीतंबर साथ लिया रखा करते एक चादर, वो मुचकंद के ऊपर उड़ा दी और आप अंदर जाकर दूर खड़े होकर देखने लगे। अब काल्यवन उसके पीछे पीछे श्री कृष्ण को मारने के लिए उसी गुफा में पहुंच गया, कंदरा में। आगे काल्यवन ने सोचा कि ये सो गया, कृष्ण लुक के यहां छुप गया, कपड़े तो पहचान लिया, पीला कपड़ा था जो उसका पीताम्बर था, और टांग पकड़कर मरोड़ दिया मुचकंद को, कृष्ण जान के खड़ा हो कायर, तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब मुचकंद की निंद्रा भंग होगी, उसका क्रोध हुआ, क्रोध से उसकी आंखों में अग्निबाण छूटे और काल्यवन मारा गया। अपुण्य आत्माओं विचार करण की बात है, यदि ये थ्योरी इन लोकवेद सुनाने वालों की, गीता वालों की ठीक होती कि अर्जुन युद्ध अक्षत्रिय धर्म से गिर रहा था इसलिए उसको अक्षत्रिय धर्म का पालन कराना आवश्यकता, नहीं तो अक्षत्रिय ने क्षत्रिय हो जाते। श्री कृष्ण जी स्वयं अक्षत्रिय धर्म को नहीं त्यागते, वो भी युद्ध में लड़कर मर और मार डालते। इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण युद्ध प्रिय नहीं थे, वो तो मजबूरी में जैसे कंस और कैसी नजमा करती है, सिर पर चढ़ गिर, कोई समाधान नहीं छोड़ा, वो बात अलग थी, उनको मारना पड़ा, लेकिन इस तरह अनुरोध कराने के वो हक में नहीं थे। अब वहां तो एक कंस था और एक कृष्ण था, मार दिया कोई बात ना, और तो नहीं मरे। एक केसी था एक कृष्ण था, केसी भी मार दिया भगवान ने, वो पाप था, दुष्ट था। अब वहां तो एक दुष्ट राजा करोड़ों आदमी मरवा दे गए सैनिक ला के, इसलिए श्री कृष्ण जी ने युद्ध ना करना उचित समझा। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी में गीता के ज्ञान को रह रहकर, ज्ञान में अर्जुन को रह रहकर गीता ज्ञान दाता ने प्रेरित किया, तो युद्ध कर ले, मैं तेरे साथ हूं, तू तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि तो युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी और पराजित विजय हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तो गीता ज्ञान दाता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कराना था, अर्जुन का मुख्य उद्देश्य था युद्ध से टलने के लिए, ज्ञान में उलझा दिया उसको कि भगवान पाप लगता है, कर्म अच्छे करने चाहिए, इस तरह की जब कथा प्रारंभ की तो फिर वो शुरू हो गया वेदों वाला ज्ञान देने लग गया। उन्होंने सोचा वेदों वाले ज्ञान से तो मेरी पोल पटेगी, साथ में उसने अपना भी मत प्रवेश कर दिया। गीता जी के ज्ञान में कई मंत्रों में स्पष्ट कहता है कि ये तो मेरा मत है और ये अलग से ज्ञान है, ये वेद ज्ञान है, और इससे इनसे भी और कोई और ज्ञान है, वो तत्वदर्शी संत सुनाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो वेदों वाला ज्ञान है गीता में वो 100% सत्य है, और उसके विपरीत जो ज्ञान है गीता के ज्ञान से कुछ और घुसोड़ रखा उसने, जैसे तो युद्ध कर ले तेरा पाप नहीं लगेंगे, तुम युद्ध कर अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे, ये सब मैंने ही मार रखे हैं, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, और फिर वो पाप लगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं, श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह इस काल भगवान ने कहा।